गीता चिंतन माला में अभी विशेष कार्यक्रम है श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः द्वितीय अध्याय में 65 श्लोक तक हो गया 66 चलेगा। यह प्रसाद प्रसन्नता की स्थिति। राग द्वेष रहित होकर के और इंद्रिय को अपने बस में रख करके मन को भी अपने इच्छा से मन को नियंत्रण करके विषय सेवन करता है साधक जो अवर्जनीय और निषिद्ध नहीं हो तो प्रसादम अधिकच्छति प्रसन्नता को प्राप्त करता है, स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने से क्या है, सर्व दुख की निवृत्ति होती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व में बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसे बुद्धि स्थिर होने से लाभ बताते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति रसांतस्य कुतः सुखम्। अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, आत्मस्वरूप बुद्धि अयुक्त का तो जो समाहित नहीं है, युक्त का तो समाहित। जब आत्म अंतकरण समाहित हो तब तो आत्म विषय की बुद्धि निश्चय रहेगी, असमाहित होने से आत्म विषय की बुद्धि स्थिर नहीं होती। नास्ति बुद्धि, बुद्धि का अर्थ आत्म विषय की बुद्धि, आत्मस्वरूप को विषय करने वाली बुद्धि। अयुक्तस्य असमाहितस्य, जिसका अंतकरण समाहित नहीं, मन समाहित नहीं, नियंत्रित नहीं, समयुक्त नहीं, आत्मस्वरूप बुद्धि नहीं होती है। और जब आत्म विषय की बुद्धि स्थिर नहीं होती, समाहित नहीं है, तो आत्मज्ञान का अभिनिवेश बार बार चिंतन करना ये भी कैसे होगा। आत्म विषय बुद्धि स्थिर हो तो आगे चिंतन करेगा, जब बुद्धि स्थिर नहीं हो तो चिंतन नहीं करेगा, बार बार नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो कैसे साक्षात्कार होगा, निवृत्ति शांति कैसे होगी। न च अभाव है तो शांति, इसे भावना बार बार नहीं करे तो विभिन्न विषय का संकल्प विकल्प मन से होते रहते हैं, सबसे निवृत्त होकर के परमात्मा में लगे तो शांति होगी। और बाह्य चिंतन वासना के कारण इतने चिंतन चलते रहते हैं, जब तक आत्मस्वरूप चिंतन बार बार नहीं करे, जितने अन्य विषय का संस्कार वासना है इतने आत्मस्वरूप चिंतन करे, इतने वासना बढ़े तो इधर मन अस्थिर होगा। बाह्य वासना अनादिकाल से भोगते होते बहुत है, समझने के बाद ही मन उधर भाग जाता है। ये जितने उसमें संस्कार है, इसी प्रकार आत्मस्वरूप चिंतन करते करते इतने संस्कार बढ़ेगा तभी आत्मस्वरूप में मन स्थिर होगा। थोड़ा चिंतन क्या नहीं होता है, कैसे होगा, उधर संस्कार बहुत है, उधर चल जाता है। इसलिए आत्मचिंतन करते करते संस्कार बढ़ता 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 धीरे धीरे दृढ़ता होती है। साधक का अनुभव होता है, पहले श्रवण करता तो कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ी देर बाद समझ न आने पर ही मन स्थिर नहीं होता है, थोड़ी देर समय मन भाग जाता है, फिर अभ्यास करने पर थोड़े थोड़े समय मन स्थिर होता है और समझ में आता है। थोड़े वास्तव बुद्धि से समझ लिया, ये बुद्धि बौद्धिक साधन है। एक मन से होता है कि बौद्धिक, जप आदि मन से होता है, ध्यान करते मन लगाते हैं, बिना समझ भी कुछ परमात्मा स्वरूप नाम चिंतन किया, जप किया, करते हैं, मन को लगाना चाहते हैं। किंतु बौद्धिक स्तर पर जब समझ ले आत्म तत्व को, अपने स्वरूप क्या है, परमात्मा स्वरूप क्या है, जगत क्यों मिथ्या है, ब्रह्म कैसे अद्वितीय हो सकता है, तो जीव इतने दिखते तो ये कैसे मिथ्या है, इसको थोड़ा समझने के लिए वेदांत श्रवण की आवश्यकता। तो जो तर्क श्रुति प्रमाणित है, श्रुति तो कहते नहीं है नानाति किंचन, है ही नहीं देता, तो भी हमको दिखता है, तो कैसे मिथ्या है, इसको थोड़ा तर्क से समझने के लिए बुद्धि भगवान के वाक्य बार बार सुनते सुनते उपनिषद वेदांत श्रवण करते करते थोड़े थोड़े धीरे धीरे उसमें दृढ़ता आती है। जब दृढ़ हो जाए तो बाह्य प्रपंच को छोड़ करके मन आत्मा में लगता है। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। मन को रोकने के लिए यही उपाय आगे बताएंगे। योग सूत्र अभ्यास वैराग्य अभ्याम तो निरोध वैराग्य चाहिए और अभ्यास करना पड़ता है। तो भावना नहीं कर तो शांति कैसे? अरे मन जो शांत नहीं होता है तो कुतः सुखम, तो विशेष सेवन करता है, विशेष सेवा से तृष्णा है तो सुखो क्या? सुखो क्या है? विशेष सेवा से तृष्णा की जो निवृत्ति, विशेष सेवन करने से तृष्णा बढ़ती है और तृष्णा की निवृत्ति वही सुख है। विषय को चिंतन करने वाले विषय की जो इच्छा तृष्णा वो सुख नहीं है। विषय की इच्छा सुख नहीं, विषय के भोग सुख नहीं, विषय की तृष्णा की जो निवृत्ति, विषय प्राप्त होने पर तृष्णा की निवृत्ति होगी वही सुख है। सुख किससे हुआ? तृष्णा की निवृत्ति से। विषय प्राप्त होने से थोड़े समय के लगता है तृष्णा निवृत्ति हो गई तो स्वरूप सुख का प्रतिबिंब हो गया। तृष्णा तो दुख है, इच्छा जितने दुख है, और जब तक इच्छा बहुत है सुख का गंध मात्र भी संभव नहीं है। जितने इच्छा है इतने दुख है, इच्छा कम होने पर सुख होता है। श्लोक बोलो। इसमें कहा अयुत से बुद्धि नाती, असमाहित होने पर बुद्धि आत्म विषय की बुद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? आगे कहते हैं इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभसि। इंद्रियाणां चरतां यन्मनोनु विधीयते। इंद्रिय तो विषय को जाती है, जो जाती है तो मनो अनुविधियती, मनो उसके पीछे जाता है। अरे मनो जो पीछे जाता है इंद्रिय के पीछे, तदस्य प्रज्ञा हरति, अस्य साधक के प्रज्ञा विवेक बुद्धि को खींच लेता है, मन हर लेता है। कैसे हर लेता है? आयुर अम्बसी नाभमिव, अम्बसी जल में नौका को, जैसे वायु जोर से आने पर नौका को जाना कहीं हवा से कहीं जाकर नौका पहुंच जाती है, जाना लक्ष्य कुछ अलग है, पहुंच जाती कहां अलग है। जैसे वायु को वायु नौका को लेकर के कहां ने कहां पहुंचा देती है, इसी प्रकार मन इंद्रिय भागने पर मन जो भागता है उसके पीछे विवेक बुद्धि को भी खींच लेता है। विवेक बुद्धि को खींच लेने से आत्म विषय की चिंतन कहां होगा, वो लेकर प्रज्ञा को लेकर कहां से विषय का चिंतन विषय में लगा दिया। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित श्लोक आया था, विवेकी पुरुष चिंतन करता है तो भी ये इंद्रिय खींच करके कहां से ले लेते हैं, इसका भी उपसंहार करते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। महाबाहु हे महाबाहु, महान तो बाहु यस्य, बड़े बड़े बाहु वाले, बड़े बड़े बाहु लक्षण अच्छा लक्षण होता है, और महाबाहु को अगर संबोधन कर देना तो समर्थ हो। यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्वस्य निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसके बिना बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। इंद्रिय स्वयं के बिना बुद्धि स्थिर नहीं होगी। तस्माद् यस्य इंद्रियाणि सर्वस्य इंद्रियार्थेभ्य निगृहीतानि, विषय इंद्रिय के विषय शब्द स्पर्श रूपादि है, इनसे पूरा पूरा जो निगृहित इंद्रिय को निग्रह करके खींच करके अपनी इच्छा से जब चाहे कच्छप के समान विषय सेवन करने के लिए अल्प स्वल्प और हमेशा निग्रह करके रखे, जिससे इंद्रिय निग्रह है विषय से निगृहित होती है तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती, प्रतिष्ठित हो जाती बुद्धि, तब आत्म विषय की बुद्धि कहते हैं सब मन मन ब्रह्म में परमात्मा में लगता नहीं, स्थिर नहीं होता है। क्यों नहीं लगता है? पहले इंद्रियों को जीतना पड़ता है विषय से, जितने विषय का सेवन इंद्रिय से करते हैं, मन से चिंतन होता है, इतने संस्कार बढ़ता है, जितने मन से चिंतन होता है, जितने विषय को देखना सुनना आदि करते रहते हैं, इतने संस्कार बढ़ता है। पहले अंतकरण तो संस्कार बहुत है, उसके बाद भी कुछ देखना सुनना करते रहते तो संस्कार अच्छी संस्कार उद्भूत हो जाती है, प्रकट हो जाती है, दृढ़ हो जाता है। संस्कार दृढ़ हो जाने से, वासना दृढ़ हो जाने से फिर वही चिंतन होता है, बुद्धि स्थिर कैसे होगी? इसलिए बाह्य विषय चिंतन, बाह्य विषय ग्रहण, विषय जैसे ग्रहण होता है, मन से चिंतन होता है, इसको रोक करके परमात्मा में लगाना पड़ता है। विषय सेवन में ज्यादा लग गया तो संस्कार उद्भूत होकर के वासना इतने प्रकट हो जाती है, फिर संकल्प विकल्प मन उधर भागता है। यही है जिसके इंद्रिय निगृहित है विषय से, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। इसलिए साधु को पहले इंद्रियों का निग्रह करना ही चाहिए, शब्दादि विषय से जितने आवश्यक कम से कम इतने से चलाए। व्यर्थ इंद्रिय के विषय में लग गया तो विषय सेवन में तो मन में संस्कार होने से परमात्मा का भजन कभी नहीं हो सकता है चिंतन। श्लोक बोलो। ये तो प्रश्न हुआ था स्थित प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थिर होगी उसके कैसे व्यवहार आदि है। ज्ञान जब हो जाता है, एक तो लौकिक व्यवहार होता है, एक शास्त्रीय व्यवहार, वैदिक व्यवहार शास्त्रीय, वेद आदि अध्ययन नहीं करते तो शास्त्रीय मालूम नहीं, तो भी स्मृति आदि पढ़ते हुए कुछ परंपरा से कुछ मालूम होता है, शास्त्रीय व्यवहार करते हैं साधक को, अशास्त्रीय व्यवहार छोड़ करके शास्त्रीय व्यवहार करना होता है। किंतु जब ज्ञान हो जाता है, वही स्थित प्रज्ञा हो गया तो अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से होती है। अविद्या है अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी और किससे होगी? केवल ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति, केवल प्रकाश से ही अंधकार की निवृत्ति। प्रकाश को जलाने के लिए बहुत साधन चाहिए, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए बहुत साधन चाहिए, किंतु ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति, ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान सिद्ध आ जाना नहीं होता है, ज्ञान के लिए साधन चाहिए। तो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है, अविद्या विद्या के विरोधी। तो ज्ञान होते ही अज्ञान निवृत्त होने से जितने व्यवहार सब अज्ञान के कारण है, लौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार जितने व्यवहार अज्ञान से होने से ज्ञान होते सारे व्यवहार निवृत्त हो जाता है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। आगे उसके कर्तव्य नहीं, मैं करूं कुछ, ये मेरा कर्तव्य, इदम कर्तव्य, ये प्राप्तव्य, कुछ प्राप्त करना, कुछ करना, कुछ देखना, कुछ नहीं रहता है। तो उसको क्या कहते हैं? कृतकृत्य। सब कुछ कर लिया जो करना था, कृतकृत्य हो जाता है, तब तो परमानंद में स्थित होता है। अब इसके लिए स्पष्ट करते हैं ज्ञानी की स्थिति कैसी, अज्ञानी की स्थिति और ज्ञानी की स्थिति में कैसे विपरीत वैपरीत्य दिखाते हैं। या निशा सर्वभूताना तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागृति, यस्यां भूतानि जागृति सा पश्यत मुनेः निशा। दो वाक्य पूर्वाध उत्तरार्ध, पूर्वाध वाक्य में क्रियापद क्या है? जागृति। उत्तरार्ध में है जागृति, पश्यत सत्रियंत हो गया, सुबंध हो गया जागृति। पहले में जागृति, दूसरे में जागृति, या दोनों बराबर है? अलग अलग है। पहले में जागृति, दूसरे में जागृति, तो गलत है क्या? है दोनों अलग अलग, अलग अलग है। अलग अलग क्यों है ऐसा? यही अलग अलग करना है। क्यों अलग अलग हुआ? कोई बहुवचन होगा, कोई एकवचन होगा। कौन सा एकवचन है, कौन सा बहुवचन है, बताओ। अब रुक जाओ। हाँ? कौन सा? पहले जागृति, वो एकवचन है बहुवचन है? एकवचन। उत्तरार्ध में जागृति, वह है। हाँ, यही अंतर है। करता है भूतानि जागृति, तस्याम जागृति संयमी। कर्ता कौन है पूर्वार्ध में? संयमी एक है, संयमी जागृति, जगता है। किस है? एक वचन संयमी, संयमी जागृति, जगता है। कहाँ, किस में जागता है? तस्याम जागृति। तस्याम कस्याम? निशाया। कौन सी निशा है? या सर्वभूतानां निशा, सारे प्राणियों की जो निशा है, उसी निशा में स्वयं ही ज्ञानी जागता है। सारे प्राणियों की निशा कौन है? रात में अंधकार हो जाते हैं तो अविवेक से नहीं देखते हैं, वो निशा के जैसे हो गया। परमात्मा तत्व आत्मस्वरूप अज्ञानी के लिए निशा या दिन है निशा, उसका जान वो नहीं जानते। पारमार्थिक तत्व आत्म तत्व को अविवेक ज्ञान अज्ञानी लोग नहीं जानते। नहीं जानने से वह सारे भूत के लिए निशा के समान हुआ। परमार्थ तत्व सारे भूतों के लिए, अज्ञानियों के लिए क्या हुआ? निशा। या सर्वभूतानाम निशा, सारे भूत के निशा के समान, रात के समान अविवेक करने वाले अज्ञान के कारण तस्याम संयम जागृति, उसी निशा में स्वयं ज्ञानी जागता रहता है। परमात्म तत्व का साक्षात्कार करके सर्व में स्थित रहता है। उसके लिए परमात्म तत्व को जानता है ज्ञानी, परमात्म तत्व जानकर जागता रहता है, उसी में स्थित है। यस्याम भूतानि जागृति, जिस निशा में भूत जागते हैं, निशा में भूत जागते हैं, निशा में जागते क्या? अज्ञान में तो है किन्तु उसमें लगता हम जागे हैं। अज्ञान में सोया हुआ, जैसे रात को सोया हुआ स्वप्न देख रहा है, स्वप्न देखते समय क्या लगता है? हम जागे हैं या सोए हुए लगता है? जगे हैं। ये अभी आप जगे हैं या सोए हुए हैं? जगे हैं। श्रुति कहती उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य भरा निबोधत, जो जगे उसको श्रुति कही जागृत। सोया हुआ थे को श्रुति कहती जागो, जग जाओ, उठो। सोया का हुआ कब से? अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। भगवान भाष्यकार के परम गुरु जी ने कहा, अनादि माया से सोया हुआ, अज्ञान निद्रा में सोया हुआ, अज्ञान निद्रा से सो करके उस समय जागता जैसे अपने को लगता है, स्वप्न देखते समय जैसे मानता है जगा हुआ, अब इस लगता हम जगे हैं। यस्याम भूतानि जागृति, भूत उसमें जागे, अज्ञान के कार्य सारे प्रपंच देखते हैं। सा पश्यत मुने निशा, जो साक्षात्कार जिसको हो गया मुनि ज्ञानी, उसके लिए द्वैत प्रपंच जिसमें अज्ञानी लोग को जागे है, अज्ञानी लोग उसको देख रहे हैं। स्वप्न प्रपंच को देख करके स्वप्न देखने वाला मानता है मैं जगा हूं, सोया हुआ मानता है, देखता रहता है। उसमें ज्ञानी के वो सा पश्यत मुने निशा, और निशा के समान, रात के समान, अर्थात द्वैत प्रपंच को ज्ञानी विचार चिंतन नहीं करता है, देखता नहीं। और जिसको देखते हैं अज्ञानी लोग को द्वैत प्रपंच को, उसमें ज्ञानी सोचता नहीं। और जिसमें सोए परमार्थ तत्व को नहीं जानते अज्ञानी लोग, उसमें ज्ञानी तस्याम जागृति संयमी। एक कौवा और एक उल्लू को होते, काको उल्लू को, कौवा जो दिन में तो देखते हैं रात को नहीं देख पाएंगे, उल्लू के होते हैं रात को देखेंगे दिन में नहीं देख पाएंगे। इसे उन दोनों का परस्पर विरुद्ध शत्रुता है। कौवा को परेशानी करेंगे रात में उल्लू, रूलों को परेशान करेंगे कौवा को दिन में। ये काक और लोगों के समान संसार अज्ञानी आत्मज्ञानी के ऐसे भेद है। यह परेशानी करने का नहीं है, विपरीत है। कौवा के लिए दिन उल्लू के लिए रात है, और उल्लू के लिए दिन होता रात है, उसमें कौवा के लिए रात है। तो इसी प्रकार ये ज्ञानी और ज्ञान का भेद है। श्लोक बोलो। प्रजाहत यदा कामान कह करके सारे ऐसा इच्छा को त्याग कर लेता है, तभी स्थित प्रज्ञ होता है। वही स्थित प्रज्ञ ज्ञानी की ही मोक्ष प्राप्ति होती है, ज्ञानी को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान इच्छा वासना त्याग नहीं कर पाए, कामना है तो उसको ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा, इसको ही बताते हैं। आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। द्वितीय पद में कितने पद है? समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्। तृतीय पद में कितने है? चार नहीं, यदवत में दो पद है, पांच हो जाएगा। यदवत यदवत, अच्छा यदवत नहीं, यदवत एक हो जाएगा, यदवत अव्यय पद हो जाएगा। तीन चार पद ठीक है। समुद्र में आप प्रविशंति यदवत। तृतीय पद में कितने है? प्रविशंति एक पद है ना, वस्तु तो प्रविशंति में प्र उपसर्ग विशंति क्रियापद है, इसे तिंगंत के साथ समास नहीं होने से दो पद है, किंतु उसके एक पद कहा जाता है। दोनों में संहिता होकर रहता है, मिलकर हमेशा रहेगा, अलग नहीं होता है, किंतु दोनों मिलकर के एक पद नहीं होता है। तिंगंत क्रिया के साथ उपसर्ग का मिलकर के प्रयोग होता है, तो उसको एक पद समझते प्रपूर्वक विशंति है, प्रविशंति। समुद्रम यदवत आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशंति। प्रविशंति का करता है आप, अपशब्द नित्य भोजन, जल प्रवेश करते हैं समुद्र में, प्रवेश करते नदियों में जाकर के, नदियों से जल जाकर के कहां प्रवेश करते हैं? समुद्र में जो प्रतिष्ठा करते हैं, समुद्र में खाली रहता है उसको भरते हैं जल जाकर के, खाली समुद्र का पानी भरता है नदी से जाकर के, समुद्र भरा हुआ है। और अचल प्रतिष्ठम, वर्षा में पानी जाने पर समुद्र बढ़ जाता है, गर्मी में घट जाता है, अचल अचल प्रतिष्ठा हमेशा स्थिर है, ऐसे समुद्र को पानी जाकर भर जाते हैं। भर करके समुद्र को क्या करते हैं? पानी नदी में जाकर के, पानी नदी में जाकर के समुद्र को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, कुछ करते हैं, उसमें जाकर स्वयं लीन हो गए पानी, जाकर उसमें अपने लीन हो गए, जाकर समुद्र नाम हो गया, आगे गंगा गोदावरी नर्मदा ये नाम रहा, समुद्र हो गया, समुद्र हो गया, अपने लीन हो गया। तद्वत यं सर्वे कामा प्रविशन्ति स शांति में आपनोति। जिस ज्ञान में सारे काम कामना के विषय कामना सब उसमें प्रविष्ट हो जाती हो करके क्या उसको कुछ करते नहीं, जैसे जल जाकर के समुद्र को कुछ घटाया बढ़ाया कुछ नहीं किया, स्वयं अपने समाप्त हो गया, अपना नाम रूप समाप्त हो गया। इसी प्रकार जिस ज्ञान में ये कामना वासना सो जाकर के उसको कुछ नहीं कर पाते हैं, स्वयं अपने लुप्त हो गया। नदी समुद्र जाने के बाद और नदी का अस्तित्व सत्ता कुछ अलग दिखता है, वो गया समुद्र ही हो गया। इसी प्रकार जितने कामना है इच्छा है विषय है सब ज्ञानी में प्रवेश कर लेते हैं, प्रवेश करने पर जितने भोग सब प्रवेश कर लेते हैं, ज्ञानी को कुछ भी परिवर्तन ज्ञानी में नहीं करते, स्वयं लीन होगी। वहां ज्ञानी को देखें तो ना उसमें तृष्णा कामना कुछ है, ना कोई भोग है, कुछ नहीं, इच्छा समाप्त हो जाती। जितने भी विषय भोग उसके लिए ज्ञानी में सब एक होगी। जैसे समुद्र को नदी पानी जाकर कुछ नहीं करते, इसी प्रकार जितने भोग्य पदार्थ इच्छा सब है सब जाकर के ज्ञानी को कुछ नहीं कर पाते, ज्ञानी शांत स्थिर रहता है। इसी प्रकार जिसको जो सर्वे कामा प्रविशन्ति वही शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, कामना इच्छा करने वाले विषय काम है, काम्यते इति कामा, विषय विषय की इच्छा करने वाले को शांति मिलेगी। जितने तब विषय की इच्छा है, वासना है, तब तक शांति की प्राप्ति कभी नहीं होगी। एक एक करके विषय इच्छा छोड़ना पड़ता है, और साक्षात्कार होने पर जो परम शांति हो तो बहुत दूर की बात है। थोड़ी थोड़ी विषय की इच्छा छोड़ने पर भी साधक अनुभव करता है, थोड़े थोड़े शांति, सात्विक सुख मिलता है। उसे निश्चय हो जाता है पूरे विषय की इच्छा छोड़ दे तो अवश्य ही परम शांति की प्राप्ति होती है। साधु को क्या करना चाहिए? ऐसनाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग। कठिन बहुत है, किंतु ये विचार कर सोचे कि हमारे प्रारब्ध में तो अवश्य मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। इच्छा करने से अधिक मिल जाएगा, इच्छा करने से अधिक मिलता तो कोई गरीब नहीं होता, सौ करोड़पति हो जाते। इच्छा नहीं करने पर नहीं मिलेगा। कोई दुख प्राप्त करना चाहता है, दुख प्राप्त करना नहीं चाहता तो दुख नहीं मिलता है। इच्छा नहीं करने पर भी जैसे दुख मिलता है ऐसे सुख ही मिलेगा। इसे इच्छा का त्याग करना है। न काम कामी, कामना करने वाले व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं करता है। श्लोक बोलो। इसलिए क्या करना चाहिए साधु को? भगवान कह देते हैं, विहाय कामानि सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। अभी इसमें एक एक पद अलग अलग करना। पहला क्या पद है? विहाय। दूसरा पद क्या है? कामान, यह कामान। चतुर्थ पद क्या है? सर्वान। पंचम पद क्या है? पुमान। पुमान के न को इसे हो गया, न को रू होकर के स होकर अनुसार है पुमान। आगे क्या है? चरती। आगे निष्पुर। आगे क्या है? क्या है? नहीं, निर्मम में क्या है? निर्ममो या निर्मम? निर्मम अलग करेंगे तो निर्मम, जिसे निरहंकार विसर्ग है इसे निर्मम विसर्ग होना चाहिए। किंतु देखो, निरहंकार में विसर्ग है और निर्मम में विसर्ग नहीं है। पदच्छेद करेंगे तो निर्मम निरहंकार, निरहंकार के आगे विसर्ग क्यों है? आगे क्या बने? स पर में तो विसर्ग हुआ। निर्मम में आगे क्या है? न है। नी कौन बोलता है? न है। क्या है? न है। न में इकार पहले लिखते हैं किंतु है नकार। न होने से विसर्ग रहेगा? न के पहले कहीं विसर्ग होता है? देखिए, निर्ममो वो हो गया। कभी भी पर में न है तो विसर्ग नहीं होता है। तो देखो, कामान यह एक विसर्ग, निरंकार में विसर्ग है। आगे क्या है? स। कामान यह के आगे विसर्ग है। आगे क्या है? स। और निष्पृह में बीच में विसर्ग है। आगे क्या है? स है। निष्पृह अंत में विसर्ग है। आगे क्या है? आगे क्या है? विराम है। निष्पृह क्या आगे? विराम है। विराम हो तभी हो जाएगा, विराम के बिना। स स कितने के बनना चाहिए विसर्ग होने के लिए? क ख प फ तीन प्रकार से। यह सर्वान कामान विहाय, यह पुमान सर्वान कामान विहाय, निर्मम निरहंकार निस्पृह चरति स शांति में अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। भगवान कहते शांति को मिलने प्राप्त करना है, कौन चाहता है शांति प्राप्त करना? कोई चाहते है? तो चाहते तो यही करना पड़ेगा, भगवान बता दे सरल मार्ग क्या करना चाहिए। कामान विहाय काम्यंते, काम विषय को छोड़ करके कितने को है सर्वान कामान, सारे कामना को छोड़ दे, भोग इच्छा भोग को छोड़ दे और निष्पृह स्प्रिया रहित तो होकर के छोड़ दिया, किंतु उसमें इच्छा है तो मिल जाए। एक दिन तो उपवास करेंगे, दूसरे दिन के लिए पैर से तैयारी, कल को क्या खाएंगे, एकादशी अभी उपवास करते तो कल को क्या करना है, कब पूरा होगा, ऐसे नहीं। निष्पृह स्प्रिया रहित तो, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इच्छा ही नहीं। और निर्मम ममत्व वर्जित है, मेरा मेरा ये भी छोड़ करके, और निरहंकार अहंकार रहित तो होकर के, अहंकार रहित तो है तो जो देह में अहम बुद्धि तो अहंकार है, अथवा हमको बहुत आता है, शास्त्र ज्ञान है, श्लोक बहुत कंठते है, हम बहुत समझते है, बहुत साधन करते है, हमें बड़े भक्त है, ये सब अहंकार है। ये भी छोड़ करके जब तक तो परमात्मा साक्षात्कार नहीं किया तो अहंकार व्यर्थ है, अपने को मानने से क्या होगा, बहुत बड़ा मैं भक्त हूं, अभी तो साक्षात्कार नहीं किया भगवान का, बड़ा भक्त क्या हो, भगवान में मन पूरा लगाता नहीं रहता तो बड़ा भक्त क्या है, बहुत बड़ा ज्ञान है साक्षात्कार नहीं है, बहुत बड़ा मानने से क्या होगा। कंठस्थ कर लेने शास्त्र पढ़ लेने से, पढ़ा लेने से, प्रवचन कर देने से ज्ञान हो गया, मोक्ष हो जाएगा, साक्षात्कार होना चाहिए। साक्षात्कार के लिए साधन है, शास्त्र श्रवण करके समझ करके साक्षात्कार जो होता है तो ठीक है, उसके बिना खाली ज्ञान ही मान लेने से कुछ नहीं होता है। ये अहंकार पतन का कारण होता है, ममता अहंकार को छोड़ लेता है, ये अंत में अहंकार को छोड़ना पड़ता है, सब छोड़ता है। शुरू से अहंकार को छोड़ने के लिए ही साधन किया जाता है, गुरुकुल में जाते हैं, चरण सेवा करते हैं, सब प्रकार सेवा करते हैं, तृणाद अपनी सुनीचे न तिनका से तृण से नीचे होकर के, तरोर इव तरोर अपनी सही सुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। अपने स्वयं अमानी, अपने को मान नहीं, दूसरे को सम्मान करे, भगवान का कीर्तन चिंतन करे, नीच बन करके निकृष बन करके, निर्मम निरहंकार जिसके ममत्व अहंकार रहित तो हो गया वही शांति को प्राप्त करता है। श्लोक बोलो यहाँ स्थित प्रज्ञ ज्ञानी की निष्ठा कही गई, उसकी स्तुति करते कैसे ज्ञानी की निष्ठा है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तृतीय पद में कितने पद है? हाँ ठीक है, स्थित्वा अस्याम अंतकाले पी, और चतुर्थ पद में तीन है, ब्रह्म रूप निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण में इच्छति। एक पद भी कर सकते हैं, दो पद भी हो सकता है, ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म रूप निर्वाण, ब्रह्म ही निर्वाण है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एना प्राप्य न विमुहति, ये ब्राह्मी ब्रह्मणी भवा ब्राह्मी, ब्रह्म में होने वाले ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म स्थिति, एनाम प्राप्य स्थिति को प्राप्त करने पर मोह को प्राप्त नहीं करता, भ्रांति नहीं होती, ब्रह्म रूप से रहता है, अहम ब्रह्म अहम सिंह परम ब्रह्म दृढ़ निश्चय हो जाता है, आगे मोह नहीं है। अश्याम अंतकाल स्थित्वापि, अभ्यास करते करते साक्षात्कार नहीं होता है, किन्तु अंतकाल में यदि स्थित हो जाए तो भी ब्रह्म रूप निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इच्छति प्राप्त करता है, गति अर्थ निश्चति। ब्रह्म में स्थिर होता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म रूप निर्वाण मुख्य को प्राप्त करता है, वही ब्रह्म रूप होता है, ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति। अंतिम समय में स्थिति हो जाए तो भी, अरे पहले से जिसकी स्थिति हो जाए तो मुक्त होगा, उसमें और क्या कहना है। अभ्यास करते करते यदि नहीं होता है तो क्या करना है, छोड़ करके भाग जाना, थोड़े समय लग करके छोड़ कर भाग जाने से नहीं होता है, लगना पड़ता है। यदि नहीं होता है तो तीव्रता चाहिए, अपने कुछ कमती है उसको दूर करना पड़ता है, कुछ प्रतिबंधक है, कुछ अंदर वासना छिपी हुई है उसको छोड़ना पड़ता है, इधर चिंतन साधन भी करे और कुछ प्रतिबंधक होकर उसको हटाए, अंतकाल में स्वरूप स्थित होता है तो परमात्मा प्राप्त कर लेता है। अंतकाल समा में आगे कहेंगे, परमात्मा चिंतन करता है तो अंतकाल में परमात्मा प्राप्त करता है। श्लोक बोलो। इति श्रीमत् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। श्रीमत् भगवत गीतासु, गीता को उपनिषद का उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया, वही ब्रह्म विद्याय योग शास्त्र। इसमें दो योग है, कर्म योग और ज्ञान योग। श्री कृष्णार्जुन संवाद, श्री कृष्णार्जुन संवाद में यह सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ, अभी तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। पूर्व अध्याय में जब स्थित प्रज्ञ से का भाषा पूछा, प्रजाहत यदा कामान से प्रारंभ करके अध्याय समाप्ति तक सांख्य युग कहा, अंत में उसको कहा कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुहत अंतकाल स्थित होने पर मुक्त हो जाता है कहा ये। और कर्म उसको क्या कहते अर्जुन को, कर्मणि अधिकार अस्ति मां फलेषु कदाचन मां ते संगोस्तु कर्मणि तस्मात् कुरु कर्म कर्म तुम करो। ब्राह्मी स्थिति की स्तुति करके सारे कामना छोड़ करके ब्रह्म में स्थित हो जाता है तो ब्रह्म रूप मोक्ष को प्राप्त करता है, बहुत श्रेष्ठ है ज्ञानी कह करके। और मुझे कहते कि तुम कर्म करो, युद्ध करो, कर्म करो, जो श्रेष्ठ है उसकी स्तुति करते कि अंतकाल में स्थित हो गया तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब तुम्हारे कर्म कर्मणि व अधिकार थे मां फलिशु फल की इच्छा छोड़कर खाली तुम कर्म करते रहो, ये तो व्याकुलित तो हो गया। आप यदि अर्जुन पूछता है जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन ते बुद्धि हे जनार्दन कर्म यदि बुद्धि जायसी कर्म के अपेक्षा यदि ये बुद्धि ज्ञान उत्कृष्ट है कर्मण पंचम कर्म की अपेक्षा जायसी का था प्रशस्तर यदि बुद्धि कर्म से बुद्धि का था ज्ञान कर्म की अपेक्षा ज्ञान उत्कृष्ट है ये यदि आपके मत है तत्माम किम घोरे कर्मण नियोजयसी घोर कर्म में क्यों लगाते आप हिंसा युद्ध करने के लिए इसमें क्यों लगाते यदि आप मानते ज्ञान कर्म से उत्कृष्ट है और ज्ञान करने से ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अंतकाल में स्थित होने पर भी ये यदि आप मानते हैं तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं कुरु कर्म में तस्मा तुम और कर्मणियों अधिकार थे इसमें क्यों लगाते हैं है कैसा वो ये प्रश्न है। श्लोक बोलो। अर्जुन को लगता है कि ये तो मिला हुआ वाक्य इधर उधर बोलते, इधर ज्ञान उधर कर्म, ज्ञान श्रेष्ठ है मुझे कहते कर्म करो, लगता है जैसे अपने को भ्रांति में डालते हैं, किंतु भगवान तो भ्रांति में नहीं डालते हैं, इसे मालूम है। इसे वो कहता है आप मुझे लगता है आप मिश्रित शब्द बोलते जैसे और मुझे भ्रांति में डालते जैसे मुझे लगता है, अर्थात वास्तव आप भ्रांति में नहीं डालते, आप ठीक बोलते किन्तु मैं ही समझ नहीं पाता हूँ, मुझे ठीक करके एक साधन बता दीजिए क्या करो, इस मिलाकर कम से कम करेंगे क्या। यामि श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। प्रथम पद में कितने पद है, द्वितीय पद क्या है, इव है वाक्य नहीं, द्वितीय पद में कितने पद है, चार है, तृतीय पद क्या है, इव, इव का था जैसे व्यामिश्र न इव वाक्य न, आपका जो वाक्य है व्यामिश्र जैसे मिला हुआ जैसे, इधर कर्म करने के लिए कहते इधर ज्ञान उत्कृष्ट कहते, तो क्या हम करेंगे, व्यामिश्रेण इव, आप तो ठीक बोलते हैं किंतु हमको समझ नहीं आने से हमको लगता है मिला हुआ जैसे, इधर ज्ञान की स्तुति करते इधर कर्म करने के लिए कहते, ये क्या बात है। बुद्धिम मैं बुद्धि मोहयसि इव, हमारी बुद्धि को मोह में डालते हो जैसे मुझे लगता है, आप मोहयसि मोह में डालते नहीं मैं जानता हूं, किन्तु मुझे लगता है मैं बुद्धि मोहेशी वो मोह में डालते जैसे, थोड़ा साफ साफ बता दे तद एकम निश्चित बोध निश्चय करके बता दो, ये न अहम श्रेयम आपने जिसे मैं कल्याण को प्राप्त करू, श्रेय प्राप्त करू, जिससे मैं निश्चय निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त करू, उनमें से ठीक कर बता दीजिए तुम ये काम करो ये काम करो, ये श्रेष्ठ है। और बाकी यदि हमको कर्म करना है और उनके ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने से हमको क्या मिलेगा, इधर कहते तुम कर्म करो और ब्रह्म में स्थित हो जाए अंतकाल में तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो यदि प्राप्त करता तो हमको बताओ उसकी स्थिति के लिए बोलो, इधर कहते कर्म है कि तुम करो, ये क्या है, ठीक करे बता दीजिए कोई साधन, या तो कर्म करो तो ज्ञान किस में जाना, यहां स्पष्ट हो जाता है दो मार्ग ही, कर्मयुग अथवा ज्ञान युग, कर्मनिष्ठा अथवा ज्ञान, भक्ति जो है वो दोनों में है अलग नहीं। भागवत में योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नैनाम श्रेय विदित सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्वस्ति कुतस्त्रचित, भागवत एकादश स्कंधे में भगवान कहते हैं तीन योग है, मनुष्य के लिए कहा ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च, दूसरा कोई उपाय नहीं, भक्ति वे के रखा है। यहां भगवान कहते आगे स्पष्ट करते हैं, तो आगे आगे श्लोक अभी कहेंगे स्पष्ट करते, दो ही ज्ञान और कर्म, भक्ति उसमें कर्म के अंदर भी भक्ति है, कर्म है भक्ति मानस कर्म है, भक्ति भी मानस कर्म है, और कर्म करते समय भक्ति की आवश्यकता उपासना आवश्यकता है, ज्ञान मार्ग चलने वाले के लिए भी उपासना की आवश्यकता है, इसलिए भक्ति दोनों के साथ है, चार प्रकार भक्त बताएंगे, तो यहां भक्ति के लिए अलग नहीं दो विवाह कर दिया भगवान कहते हैं। तदेक वदन शिष्य को बोल दो व्यामिश्र ने हो अर्जुन ही नहीं कहता कि आप मुंह में डालते हो मिला हुआ वाक्य बोलते हो, ऐसा नहीं युवकार देकर कहते हैं ऐसा मुझे लगता है, तो निश्चय कर मुझे बताया करे प्रार्थना है। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। देखो तृतीय पाद में ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। चतुर्थ पाद में मकार है, वहां विराम होने से मकार है, अनुसार नहीं होता है। द्वितीय पाद सांख्या नाम मकार को ही अनुसार हो गया। मकार को अनुसार हो तो इसका उच्चारण करते समय उष्ट नहीं लगेगा। सांख्या नाम, सांख्या नाम, ज्ञान योगेन सांख्या नाम, बोलो। हाँ, उष्ट लग गया जिसका गलत हो गया, अपने आप समझ लेना। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। अंत में उष्ट लग गया क्या है? हाँ, लगा करके फिर नाक से थोड़ा निकले। कर्म योगेन योगिनां, अंत में अन्ना चाहिएगा। अस्मिन् लोके मया पूरा द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता हे अनघ। अघय पाप, जिसके पाप ने निष्पाप उसको तो अनघ निष्पाप कर करके पूरा प्राचीन काल से मैंने कही दो प्रकार निष्ठा। अस्मिन् लोके शास्त्र अनुष्ठान करने में शास्त्रीय कर्म के अनुसार शास्त्र मार्ग में चलने वाले जो उनके लिए दो निष्ठा मैंने पहले कही, दो विभाग करके द्विविधा दो प्रकार, सांख्याना ज्ञान योगेना, योगिना कर्मयोगेना। कर्मयोग करने के लिए योगी शब्द का, कर्मयोग योग शब्द से, और सांख्य के लिए ज्ञान योग। अभी दो में योग कौन सा है? दोनों, ज्ञान योग और कर्मयोग। कर्मयोग योगी कह दिया, इनको सांख्य कह दिया। द्वितीय अध्याय में सांख्य योग आ गया, अभी कर्म को कर्म भी कहा है, तो दो विभाग कर दिया। दो विभाग कर देने से दोनों मिला करके नहीं, कर्म करना चाहिए सबको। कर्म करने के बाद अंतगण शुद्ध होने के बाद ही ज्ञान युग में जाएंगे, स्पष्ट कर बता देंगे भगवान। आरूढ़ मुनि योगम, ज्ञान युग में आरूढ़ होना चाहता तो कर्म कारण उचित ही, कर्म करना है। उसी कर्म में क्या क्या गया? शास्त्र भी तो कर्म, उपासना भक्ति जितने, यज्ञ दान तप सब कुछ उसमें, और यज्ञ दान तप भक्ति सब कर्म में आ गया। और योगारूढ़ से वह ज्ञान योग में आरूढ़ हो गया, वैराग्य हो गया, और सब छोड़ करके सन्यास्य श्रवण कुर्याद, वेदांत श्रवण मनन करें, सब छोड़ करके। दो निष्ठा बताई गई। श्लोक बोलो। अभी कर्म नहीं करके निष्कर्म निष्कर्म हम हो जाएंगे, ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, ये कर्म क्यों करना? सब बहुत ऐसे भी सोचते हैं, ये सब झूठा है, इसको छोड़ो, ज्ञान का उपदेश करके सीधा ज्ञान हो। जब तक पात्रता योग्यता नहीं है, ज्ञान उपदेश से ज्ञान हो नहीं सकता है। इसलिए हमारी परंपरा पहले कर्म उपासना की आवश्यकता है। जितने साधन है सब साधन की आवश्यकता है, उसके बिना सीधा ज्ञान नहीं होगा। पहले पहले कोई अष्टावक्र गीता पढ़ लेते हैं, योगवाष्ट सुन लिया, थोड़ी शुष्क वेदांत सुन लिया, सीधा अपने को ब्रह्म ज्ञानी मान करके ज्ञान तो नहीं होता है। इधर साधन भी नहीं हुआ, उधर ज्ञान भी नहीं हुआ। ये ऐसे नहीं, पहले अष्टावक्र गीता पढ़ने पर बड़ा लगता, अच्छा समझ गया, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे कुछ प्रवचन करने वाले सीधा ज्ञान का उपदेश करते हैं, बहुत लोग सोते बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोई साधन करने का ही नहीं, ब्रह्म का उपदेश कर दिया, ज्ञान हो गया बस। अपने अपने पुस्तक पढ़ करके कुछ ऐसे सुन करके भ्री भटक जाते हैं, पतित हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में जाने के लिए पहले साधन चाहिए, इसलिए भगवान इतने बड़े शास्त्र क्यों बताते। ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम, दो विवाह कर दिया। पहले कर्म करना पड़ता है, शास्त्र भी तो कर्म करना पड़ता है, शिष्टाचार पालन करना पड़ता है, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव, ये सब शास्त्र में पहले माता पिता का अनुशासन, आचार्य कुल में जाकर के अनुशासन लेने के बाद शास्त्र अध्ययन श्रवण करे या कर्म करे। शास्त्र भी तो कर्म, धन कमान करके मकान बना दिया कहते हम कर्मयोगी, ये नहीं है। शास्त्र भी तो कर्म करना पड़ता है, और किस इच्छा से करना है, निष्काम होकर के कर्तव्य समझ करके। और नहीं कर्म करेंगे तो निष्कर्म हो जाएगा, सीधा ही ज्ञान हो गया। ये श्लोक चतुर्थ श्लोक उच्चारण किया, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभात, निष्कर्म ज्ञानी हो जाएगा सीधा, कुछ कर्म नहीं करेगा तो ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञान निश्चय प्राप्त कर लेगा। कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता पुरुष। और न च सन्यासनादेव सिद्धि संबंधी कर सकती, वैराग्य नहीं है, सन्यास सब छोड़ दिया, बस सिद्धि को ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। बहुत ऐसे संन्यास हो गया तो सब कुछ हो गया। संन्यास किसके लिए है, प्रत्येक तत्व विवेकाय संन्यास सर्व कर्मणाम श्रुत्या विधीयते अस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। प्रत्यात्म स्वरूप विवेक करने के लिए, वेदांत श्रवण करने के लिए संन्यास, संन्यास के बाद यदि वेदांत श्रवण नहीं करते हैं वो पतित हो जाता है। संन्यास लेने मात्र से ज्ञान नहीं होता है, कथा प्रवचन कर देने से मुख्य हो जाएगा, ये भी बात नहीं है। संन्यास के बाद संन्यास श्रवण कुरियात, शिक्षा और यज्ञोपवीत सूत्र, ये दोनों कर्म करने के लिए, उसके बिना भगवान को जल अर्पण नहीं कर सकते हैं, पितर भी पानी ग्रहण नहीं करते हैं। जिनका शिक्षा यज्ञोपवीत तो होना है तो ब्राह्मण क्षत्र वैश्य अवश्य शिक्षा यज्ञोपवीत रखे तो श्राद्ध पिंडदान करेगा, अर्घ्य प्रदान करेगा, मंदिर में भगवान को पूजा करेगा। जब ब्राह्मण जो जानने वाले परंपरा को, अब जाओ कला शास्त्र में रुद्री कराते पंडित आएंगे, जने नहीं तो कई जने पहनो, गया में जाओ कोई पिंडदान करने के लिए, जने नहीं तो जने पहले पहनाएंगे उसके बाद कर्म करेंगे। यज्ञ भी तो संस्कार के बिना कोई कर्म नहीं कर सकता है। बहुतों को मालूम नहीं, यज्ञ भी तो नहीं होता है तो शादी के समय कम से कम ब्राह्मण कहेंगे पहले जने पहनाएंगे तभी शादी विवाह, विवाह करने के लिए भी अधिकार नहीं, वेद अध्ययन करने का तो अधिकार नहीं, कुछ करने के लिए, पितरों को अर्पण करने के लिए, जल देने के लिए, भगवान को पूजा करने के लिए यज्ञ तो शिक्षा आवश्यक होता है। और जो संन्यास लेते हैं कर्म करने का जो अधिकार का कारण उसको भी काट देते, शिक्षा को चेतन कर लेते हैं, जने को फेंक लेते हैं। विधि शास्त्र, शास्त्र की विधि है, आचार्य गुरु के द्वारा अपने मन माने नहीं। तो सब छोड़ने के बाद वेदांत श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करना यही कर्तव्य है। यदि नहीं करता है तो संन्यास लेने के बाद पतित तो हो जाता है। संन्यास इसलिए लिया जाता है आत्म तत्व तो विवेक करके उसमें स्थित तो होने के लिए, वो स्थित नहीं हो करके बहिर्मुख प्रवृत्ति होने पर पतित तो हो जाता है। कोई पढ़ लिया थोड़ा, कथा प्रवचन लग गया और वो कथा करके रुपया इकट्ठी करे, धन संपत्ति और ख्याति प्राप्त कर ले, मुक्त तो हो जाएगा ना। अच्छा कथा करेगा तो मुक्त तो हो जाएगा ना, नहीं लाख लाख श्रोता बन जाएंगे, रुपया बहुत हो गया तो भगवान को तो मुक्ति देने पड़ेगी, कुछ नहीं। ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता है। शिक्षा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवण बिना वर्तमान से संन्यासी पतत्येव न संशय, पतन तो नरक जाता है, कोई संशय नहीं। इसलिए संन्यासनादेव सब छोड़ देने से ही सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। विधिवत संन्यास लेने पर भी ज्ञान नहीं होता तो मुख्य प्राप्त कर लेगा, और विधि के बिना जो अपने मनमानी सब छोड़ करके काशा लाल कपड़ा पहनने करके कितने मार्ग है विधि के बिना। विधि के बिना सन्यासी विधि के बिना भी नहीं होता है, जैसे विवाह विधि से ब्राह्मण पंडित के द्वारा विधि पूर्वक विवाह करते हैं, श्राद्ध करते तो पंडित के द्वारा कराते हैं, ब्राह्मण जो जानते हैं करते हैं। इसी प्रकार सन्यासी भी एक कर्म है, विधि विधान पूर्वक होता है, मनमाने नहीं। सन्यासी का जो मंत्र है, सन्यासी के बिना वो मंत्र जपने का अधिकार नहीं। मंत्र जो जप करते हैं बहुतों को मालूम नहीं किस मंत्र किसको देना चाहिए, किस में किस मंत्र का अधिकार है बहुत को मालूम नहीं है। और अपने को उदार समझ करके जो मंत्र में अधिकार नहीं वो मंत्र दे देते हैं, देखो हम बड़े कितने ऊपर की स्थिति, हम इतने उदार है, प्राचीन में तो हम नहीं मानते, हम ये मंत्र दे देते, हम कितने दयालु है। जो लोग ये मंत्र नहीं देते ना वो लोग बहुत प्राचीन है, देश करते ऐसे ऐसे सिखा करके। यदि जो मंत्र आपका अधिकार नहीं मंत्र जप करोगे निषिद्ध कर्म करने से पाप होगा नहीं बताओ। शास्त्र में नहीं कहा है किस मंत्र किसके लिए किस में किसका अधिकार है, उसके अनुसार मंत्र जपना होता है। अशास्त्रीय मार्ग पर चलने से पाप हो, श्रद्धा का फल मिलेगा, श्रद्धा से आप मंत्र जप करो उसका फल मिलेगा, किन्तु निषिद्ध मंत्र जप करने पर पाप लगेगा। यज्ञ में तो संस्कार के बिना मंत्र जब देते हैं उसे प्रणव मंत्र नहीं देते हैं, प्रणव के साथ यज्ञ पे तो सिखा रहेगा तो प्रणव के साथ मंत्र, नहीं तो प्रणव के साथ मंत्र नहीं। ब्राह्मण भले हो, कोई ब्राह्मण है यज्ञ में तो संस्कार हुआ है आगे नहीं रखता है, वो यदि आता है मंत्र लेने के लिए उसको प्रणव के नाम मंत्र दिया जाता है। या तो यज्ञ भी तो संस्कार करो, प्रायश्चित करके यज्ञ भी तो रखो, शिखा यज्ञ भी तो रखो तो प्रणव के साथ मंत्र जपना, नहीं तो नहीं है, ऐसे सब नियम है। सन्यासी विधि पूर्वक है, विधि पूर्वक सन्यास होने पर भी सन्यास का फल बहुत है, सन्यास का फल है किंतु ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। और सन्यास शब्द का तो ऐसा उनका सन्यास इच्छाओं का त्याग, जब सन्यास रहता है प्रतिज्ञा करता है मैं सब इच्छा को छोड़ दिया, ये भूलोक स्वर्गलोक कुछ नहीं चाहिए, देवताओं के साक्षी बनाकर हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करता बार बार। और ये कुछ इच्छा को सब रख करके कोई कहता हमारा शिष्य बना हमारा आश्रम तुमको मैं महंत बना दूंगा मंडेश्वर बना दूंगा, ये सन्यास होगा क्या बनने के लिए? संपत्ति मालिक बनने के लिए सन्यास, ये सन्यास है? ये सन्यास नहीं होता है। सन्यास तो सबको छोड़ना है, अपने धन संपत्ति कुछ छोड़ कर आओ, भीख मगा बनो, छोड़ कर आओ, मांग कर खाने के तैयार हो जाओ, धन संपत्ति छोड़ कर आ जाओ। राजा महाराज भी छोड़ कर जाते थे, अभी भी बड़े बड़े सब छोड़ करके आगे सन्यास। और सन्यास लेना है धन संपत्ति मिलेगा इससे सन्यासी बन जाना, वो नहीं होता है सन्यास, वो नहीं है। इसे सन्यास ना देव, खाली सन्यास मात्र सिद्धि प्राप्त कर लेता कोई ऐसा नहीं है। हाँ शास्त्र में आया यदि उम्र होने के बाद वैराग्य हुआ सन्यास्तमिति वो ब्रुयात प्राण कंठ गतिरपि न तत्क्रतु सहस्रेण फलम प्राप्नोति मानव। अंत में ऐसे कुछ मंत्र लेना पड़ता है, सन्यास्तम मैंने सन्यास कर दिया सब कुछ छोड़ दिया, देवताओं को ऋषियों को साक्षी करके कहते मैं सब छोड़ दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्राण कंठगत भी कंठगत प्राण मरते समय भी यदि सन्यास ले लेता है क्रतु सहस्रण फलम न प्राप्नोति, क्रतु याग हजार याग का फल से अधिक फल प्राप्त कर लेता है। किंतु सन्यास यदि वास्तव हो, एक होता है आतुर सन्यास, कोई मरने का समय हो गया अभी और को देखा कि जीविता नहीं रहेगा तो उसको आतुर सन्यास दे देते कि सन्यास कुछ मंत्र बता दिया तो आगे आतुर सन्यास लेने के बाद मर गया तो सन्यास कर करके उसको जैसे करते हैं। किंतु यदि स्वस्थ हो गया यदि स्वस्थ हो जाता है तो आगे उसको सन्यास लेना पड़ता है, ऐसे आतुर सन्यासी भी कही। अर्थात केवल सन्यास मात्र से नहीं होता है, जितने लोग सन्यास सन्यासी के वेश हो किसी प्रकार हो कोई भी हो जितने शास्त्र निपुण हो प्रवक्ता हो व्यवहार कुशल हो संगीत कुछ भी करे आत्मज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है सन्यास ना देव। इसे ये नहीं सोचो हम कर्म नहीं करेंगे ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर लेंगे, कुछ लोग कर्म को छुड़ा देते हैं, ये सब तुम्हारा प्रतिबंधक है, इसको छोड़ो। छोड़ने से नहीं, जो छुड़ाने के लिए छोड़ने के लिए कहते वो अज्ञानी मूढ़ है, उनके उनकी बात ग्रहण नहीं करना। सारे साधन आवश्यक है, जितने शास्त्र में साधन सब साधन आवश्यक है। और जिसका पूर्व जन्म में बहुत कुछ हुआ, वैराग्य हुआ, दृढ़ वेदांत श्रवण किया था, कुछ प्रतिबंध के कारण ज्ञान नहीं हुआ, अभी इस जन्म में शुरू से वैराग्य दृढ़ होता है, वो शुरू से ब्रह्मचारी अवस्था में से चल जाता है, संन्यास ले लेता है, ऐसे वैराग्य दृढ़ हो तो वैराग्य देना खाली कर्म छोड़ देना, कर्म तो आजकल कोई करना नहीं चाहते, कर्म छोड़ देने मात्र से परमात्मा प्राप्ति क्या हो जाएगी, कर्म करना ही पड़ता है। श्लोक बोलो। कर्म संन्यास मात्र से ज्ञान नहीं होगा तो मुख्य हो जाएगा ना, नहीं ज्ञान नहीं होने पर मुख्य हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए कारण बताते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। जातु शब्द का क्या अर्थ है? कदाचित कभी, कदाचित कभी भी, क्षणमपि कश्चित अकर्म कृत न तिष्ठति, एक क्षण भी बिना कर्म कोई नहीं रह सकता है, नहीं रहता है अज्ञानी। ज्ञान हो गया तो अलग बात है, ज्ञान हो गया तो ब्रह्म निश्चय कुछ के बिना रह जाता है, कर्म के बिना, किंतु अज्ञानी अकर्म कृत एक क्षण भी कभी नहीं रह सकता है। क्या करता है? सर्व प्रकृति जय गुण ही अवश्य कर्म कार्यते, प्रकृतिजन्य गुण के द्वारा सत्वर जतम, कितने गुण है ये प्रकृति गुण से अवश्य होकर के सो कर्म कार्यते, कर्म में लगाया जाता है। रजोगुण बढ़ जाएगा तो शांति से नहीं रह सकता है, काम क्रोध लोभ प्रवृत्ति, तम गुण है तो सो जाता है निद्रा से तंद्र, सत्व गुण से कुछ न कुछ सात्विक श्रवण तीर्थाटन जप ध्यान आदि करता है, तो अवश्य प्रकृति जीवन ही सर्व कर्म कार्य कर्म होता है, कभी शारीरिक कर्म, कभी इंद्रिय के द्वारा, कभी मन के द्वारा, ये कर्म के बिना नहीं रह सकता है अज्ञानी। इसे सोचा हम कर्म छोड़ देंगे निष्कर्म हो जाएंगे, ये संभव ही नहीं। और शास्त्र भी तो कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? निषिद्ध कर्म करेगा। शास्त्रीय कर्म नहीं करेगा, कर्म छुड़ा देंगे तो क्या करेगा? ऐसे शास्त्रीय कर्म करना चाहिए। यदि नहीं कर निष्काम नहीं करता तो भले ही सकाम करे किंतु शास्त्रीय मार्ग पर चले। आगे धीरे धीरे निष्काम करना है और शास्त्रीय को छोड़कर शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए भगवान कहते कर्म संन्यास मात्र से मुख्य हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, पतन हो जाएगा। कर्म करना चाहिए, शास्त्र भी तो कर्म करना चाहिए। निष्काम नहीं कर पा रहे तो क्या करना है? सकाम भले हो किंतु कर्म तो करना है। कर्म शब्द से शास्त्र भी तो कर्म, मनमानी कर्म नहीं, और उपासना भक्ति भी आवश्यक है, यज्ञ दान तप सब कुछ, तपस्या भी चाहिए, सहनिश्चयता, बाकी सब जितने साधन सब करना चाहिए। श्लोक बोलो। जो अज्ञानी है वो जैसे कहता मैं कर्म नहीं करूंगा, उसकी निंदा करते भगवान, ऐसा नहीं, वो मिथ्याचार है। अज्ञानी को कर्म करना है, आत्मज्ञान जो तो नहीं हुआ, कर्म उपासना भक्ति करनी चाहिए, यज्ञ दान तप तीर्थाटन सेवा सब। कर्मे इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यह कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मनसा स्मरण मनसा इंद्रियाथान स्मरण आस्ते स विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते। कर्मेन्द्रिय हस्तादि को संयम कर दिया और मन से इंद्रियाथान स्मरण आस्ते, इंद्रिय के विषय का स्मरण करते हुए रहता है। खाली कर्मेन्द्रिय संयम कर देने से मन शांत हो गया नहीं, मन से तो चिंतन चल रहा है, बाहर इंद्रिय समाप्त करके विषय चिंतन कर रहता है। विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा ऐसे विमूढ़ आत्मा का अंतकरण, अंतकरण मोहग्रस्त भ्रांत है। अंतकरण में तो विषय चिंतन करता है, अपने को सन्यासी मानने से क्या होगा, सन्यासी वेश बनने से मात्र से भी नहीं होता है। और गृहस्थ होकर कर्म छोड़कर रह जाए, हम तो भगवान का भजन करते, अपने को भक्त मानकर कोई सब कर्म छोड़ देते, भक्त मान के सब कर्म छोड़ देना भी नहीं है, शास्त्र भी तो कर्म करना पड़ता है। गृहस्थ समय तो गृहस्थ का धर्म पालन करना है, भक्त बनने पर ही भक्ति करो, उसके साथ कर्म भी करना है, कर्म और उपासना दोनों करना है। ईशावासी उपनिषद में आया, कर्म करता है उपासना नहीं करता है, तो उपासना करता है कर्म नहीं करता है, दोनों की निंदा। कर्म उपासना दोनों करनी चाहिए, कर्म करने पर भी उपासना करनी चाहिए, उपासना भक्ति करने पर भी शास्त्र भी तो कर्म करना चाहिए। और नहीं करके इसे जो रहता है मन से स्मरण करता, उसको तो मिथ्याचार कहा गया, पापाचार, मिथ्याचार पापाचरण करता है। श्लोक बोलो, ज्ञानी के लिए तो निष्ठा बता गई, ज्ञानी तो जो ईश्वर त्याग करके साक्षात्कार हो गया स्थित प्रज्ञ, वो तो कुछ नहीं कर सकता है। अज्ञानी कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। मन को लगाने के लिए शास्त्रीय कर्म, भगवान का नाम जप में मन नहीं लगता है तो पढ़ो, नहीं लगता है तो थोड़ा सुनो, किसी प्रकार नहीं तो सेवा करो, किसी प्रकार भी मन को लगाने के समय का सदुपयोग करना चाहिए। बैठ करके ध्यान जप में बैठ गया किंतु जप नहीं होता है, नहीं तो नींद लग जाती, समय चला जाता है, व्यर्थ है। उसकी अपेक्षा बुद्धि से समझने के थोड़ा दिमाग लगाए, पढ़ने पर थोड़ा सा बुद्धि के बौद्धिक स्तर पर चिंतन हो। जो शास्त्र श्रवण करने में रुचि, जिनकी रुचि है श्रवण करते है, यहां जैसे ज्ञान यज्ञ होता है, ऋषि कैसे भी ज्ञान यज्ञ जनवरी कितने से 24 से शुरू होगा, शिवरात्रि तो फरवरी 11 तक चलेगा। वहां कभी आकर गए दूर दे, देखो कितने साधु आते हैं, भक्त लोग सारा भारत में कहीं से साधु वहां कर पहुंच जाते हैं ज्ञान यज्ञ में, और किस प्रकार ज्ञान यज्ञ में उपस्थिति देखो, और कैसे तन्मय होकर दो घंटा सुनते हैं, ऐसे तन्मय होकर के पता नहीं चलेगा दो घंटा कैसे चलता है, और उपस्थित पहले से अंतिम तक, बीच में कभी कोई होगा तो जब दौड़ कर आएगा पीछे बैठता है, नहीं तो दो घंटा बैठते हैं, आराम से दो घंटा सुनते हैं। और वो भक्त लोग भी, केवल महात्मा नहीं, भक्त लोग भी बैठते हैं, जब पूरा होता है सब घड़ी देखते हैं, क्या समय हो गया, दो घंटा कैसे जाता है पता नहीं चलता है, ऐसे कभी आकर देखो तो पता चलेगा कैसे। बुद्धि के स्तर पर जो विचार होता है, अब दो घंटा समय बढ़ जाओगे सुन लोगे, दो घंटा बैठकर जप करने के लिए कहो, एक घंटा जप करो, स्वयं अनुभव करो कैसे मन कहां भटकता है। और जब श्रवण करते बौद्धिक स्तर पर जब रुचि हो जाती है, दो घंटा कैसे जाता है पता नहीं चलता है। इसे थोड़ा शास्त्र श्रवण भी चाहिए, जप भी करे, सब साधन ये करेंगे वो नहीं करेंगे सा नहीं, सब साधन करे, कथा भी सुनो कोई बात नहीं, कथा में भी मर्म का विचार होना चाहिए, कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। भागवत में भी बहुत कुछ तत्व, बहुत कुछ है, जो विद्वान लोग भागवत करते तो उसमें तत्व इतने भरा हुआ है नहीं बोल पाएंगे, बहुत ही बहुत भरा हुआ है, कम नहीं बहुत ही। तो कथा श्रवण करे भक्ति करना सब ठीक है, किंतु आवश्यक ही करना चाहिए। और कर्म इंद्रिय स्वयं करके मन से सोता रहता है, नहीं करेंगे नहीं होता है, मिथ्याचार पापाचार का श्लोक बोलो। तो मिथ्याचार के अपेक्षा क्या करना चाहिए, क्या उत्कृष्ट है? यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मे इंद्रियैः कर्मयोग मसक्तः सविशिष्यते। ये एक वाक्य है, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः आरभते स विशिष्यते। हे अर्जुन, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, इंद्रियों को मन में नियमन करके, मन से इंद्रियों को नियमन करके कर्मेन्द्रिय ही असक्त नियमन करके, असत विषय में आसक्त नहीं हो करके कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम आरभते स विशिष्ट जाते, वो उत्कृष्ट है, मिथ्याचार्य की अपेक्षा उत्कृष्ट है। इंद्रियों को मन से नियमन करके, इंद्रियों को पहले मन से अपने अधीन रह करके, तब कर्मेन्द्रिय से तो कर्म करता है किन्तु आसक्त नहीं होकर, अनासक्त होकर के विषय में आसक्त नहीं होकर के कर्तव्य पालन करता है, वो पूर्व मिथ्याचारी की अपेक्षा उत्कृष्ट है। अज्ञानी के लिए कर्म करे मन से नियमन करके कर्म करना चाहिए, शास्त्र भी तो कर्म अवश्य करना चाहिए। जो अज्ञानी है कर्म में अधिकारी है, जब तक दृढ़ वैराग्य नहीं हुआ ज्ञान मार्ग में नहीं, तब तक कर्म अवश्य करना चाहिए। दृढ़ वैराग्य नहीं हुआ और कर्म छोड़ दिया, शिक्षा को कोई छोड़ दिया, जने छोड़ दिया, मंदिर में जाना छोड़ दिया, जप करना छोड़ दिया, कोई कोई सिखाते जप करने सिखा होगा छोड़ो, सीधा ज्ञान का उपदेश करने उपवास करना छोड़ दो, कोई कोई जैसे आज बताया था क्या, जो नौका चलाने वाले वो यदि नौका को डुबाए, क्या है सुना था ना, नौका माझी, माझी क्या करते नौका जा मांझी, यदि नौका को डुबाए, महाराष्ट्री भाषा है गुजराती भाषा, हिंदी क्या है नहीं खाली मला नहीं, एक कथन है जो नौका के चलाने माझी वो यदि नौका को डुबा दे कौन रक्षा करेगा, तो सब मालूम नहीं। ये माझी शब्द तो हो गया, एक शब्द के लिए नहीं कहते, पूरा वाक्य है, पूरा वाक्य का ये अर्थ है जो नौका को चलाने वाला वो यदि नौका को डुबाए तो कौन रक्षा करेगा, क्या है फिल्म क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ तो हो सकता है, ये तो हिंदी में फिल्म गाना, ये उसको जानते हैं बहुत लोग, वास्तव जो मूल है उसको नहीं जानते हैं। ये मूल पहले लोक में कथा न है, संस्कृत में कहते रक्षक यदि भक्षक हो जाए, रक्षा करने वाला भक्षक होगा और रक्षा करने वाले चोरी करेगा जिसको रक्षा है, तो क्या होगा, जो नौका को चलाने वाले वो डुबाएगा तो कौन रक्षा करेगा। तो शास्त्र विहित तो कर्म करना चाहिए, शास्त्र विहित तो कर्म को छुड़ाने वाले जो है वो अज्ञानी है, शास्त्र विहित तो कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा, निषिद्ध कर्म करेगा, समय का बर्बाद करेगा, दुरुपयोग करेगा, पाप कमाएगा, वही पाप करने से पाप कर्म फल भोगना पड़ता है। इंद्रियाणी मनसा संयम करके अनासक्त होकर कर्म करता उत्कृष्ट है, वही है। श्लोक बोलो। अभी क्या करना चाहिए अर्जुन बोलता है हमको, ठीक ठीक बताओ क्या करना है, अभी बताते हैं। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण। त्वं नियतं कर्म कुरु, कर्म ह्यकर्मणः जाय। ते अकर्मणः सरे अत्रापि न प्रसिद्धेद। त्वं नियतं कर्म कुरु, नित्य कर्म करो। काम्य कर्म एक तो निषिद्ध कर्म और नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म। निषिद्ध कर्म तो निषिद्ध है, करने से क्या होगा? अधर्म होगा, पाप होगा, नरक आदि प्राप्ति, उसको तो नहीं करना है। और शास्त्र भी तो कर्म का तीन विभाग कर दिया, एक है काम्य कर्म कामना से यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग की इच्छा से या करे, अन्य अन्य फल के लिए अन्य अन्य फल के लिए अलग 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 यागो का विधान है काम्य कर्म। एक नित्य कर्म होता है, विधान क्या गया? अहन रह संध्या उपासित, फल कुछ नहीं कहा गया, किंतु करने के लिए कर्म करने के लिए कहा गया, वो नित्य कर्म है। नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा। मीमांसक लोग कहते करने पर कोई लाभ नहीं, नहीं करने से पाप होगा, किंतु वेदांती कहते करने पर लाभ नहीं बात नहीं, विहित कर्म करेगा तो, नित्य कर्म करेगा तो स्वर्ग मिल जाएगा। और एक नैमित्तिक कर्म, किस निमित्त के कारण विधान किया गया, नैमित्तिक ग्रहण आदि है इस हुआ और ये कर्म करे। काम्य नित्य नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म नहीं करने पर पाप होगा, करेंगे तो पाप निवृत्त हो जाएगा, पुण्य मिलेगा। और नित्य कर्म को मीमांसा के लोग कहते नित्य कर्म में फल के लिए नहीं कहा गया, जैसे अजय तो स्वर्ग काम, नित्य कर्म में नहीं कहा गया किसकी फल से किसकी इच्छा से कर्म करे, किंतु कर्म करने से फल मिल जाएगा। ऐसा जो नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए, जैसे यज्ञ भी तो संस्कार हुआ तो गायत्री जप चिंतन त्रिकाल संध्या और यज्ञ दान तब गृहस्थ के लिए कर्म करना चाहिए, बहुत कर्म। गृहस्थ आश्रम में जो धर्म शास्त्र भीत है बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। सन्यास धर्म तो कठिन है, किंतु सन्यासी में सब लोग नहीं करने पर भी कुछ मिलेंगे अपने धर्म पालन करने वाले। गृहस्थ में बड़ा कठिन है, अपने धर्म पालन करने वाले बहुत विरल है, क्योंकि पहले तो गृहस्थ बनने के लिए योग्यता चाहिए, यज्ञ में तो संस्कार करके वेद अध्ययन करना चाहिए गुरुकुल में रह करके, उसके बाद वेद अध्ययन करने के बाद फिर विधिवत विवाह है, विवाह करने के बाद रोज अपने कर्म करना पड़ता है, वेद अपने शाखा का अध्ययन रोज करना पड़ता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमोदितव्यम अतिथि सत्कार यज्ञ दान तो बहुत उसके ऊपर है। गृहस्थ एक है ब्रह्मचारी सन्यासी वान प्रसव का भरण पोषण करता है, सन्यासी को भोजन को गृहस्थ ही देते हैं, अभी देते हैं, खाली भोजन देने से नहीं होता है, अपना कर्म भी बहुत करना है, बड़ा कठिन है। ये कोई शौत श्रुति में जो याग विधान किया गया, याग करने के लिए एक बार दिल्ली में किया गया शौत याग, याग करने के लिए इतने लोग ब्राह्मण लोग को मिल गए, याग करने के लिए यजमान कौन बनेगा, यजमान कौन होगा, वो अग्निहोत्री होना चाहिए, जात पुत्र कृष्ण केश अग्नि में आदधित, बाल काला है सफेद नहीं हुआ, पुत्र हो गया, अग्नि आदान करके रोज अग्निहोत्र सायं प्रातः आहुति दे तो अग्निहोत्र, अपने मनमानी लकड़ी जला करके स्वाह स्वाह करके घी डाल दिया अग्निहोत्री नहीं है। आजकल बहुत लोग इसे करते, हम अग्निहोत्र करते, अग्नि जलाया के डाल दिया धागा, रस्सी लगा दिया धागा जनेऊ और कहेंगे सहा, कोई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है सहा, नमो नारायण है सहा, नमः शिवाय सुहा, जो कुछ जिसको आता है सुहा बोलो। ये नहीं, अग्निहोत्र करने के लिए जो विधिवत करना होता है, ऐसे अग्निहोत्र नहीं मिला यजमान बनने के लिए, फिर दक्षिण में से कहीं आया, दिल्ली में किए थे कितने साल, बहुत साल पहले, अभी अग्निहोत्र करने वाले दुर्लभ है। निविधिवत अपने मनमानी कुछ रखा, आहुति करके अग्नि दे दिया, अग्नि में घी डाल दिया, ये नहीं है। अग्नि आधान करना पड़ता तो अग्नि हमेशा रहेगा, अग्नि से लेकर के गहर पत्ते अग्नि से ला करके आवन अग्नि भवन क्या जाता है, बहुत विधान है। तो जितना हो सकता है नियत कर्म करना चाहिए, अकर्म की अपेक्षा कर्म तो उत्कृष्ट है। और अकर्म से तो शरीर आता भी न प्रसिद्ध है, तो भगवान कहते कर्म नहीं करो तो शरीर की स्थिति भी नहीं होगी, शरीर आता भी नहीं होगी। शरीर के लिए भी कर्म आवश्यक है, कोई शरीर कर्म नहीं करते तो फिर जाकर के सीखते व्यायाम करो, अपने अपने परिश्रम जो परिश्रम करने वाले उनको व्यायाम करने की आवश्यकता है। जो परिश्रम करते हैं खेती में काम करने वाले परिश्रम करने वाले उनको फिजियोथेरापी करने की आवश्यकता है, व्यायाम करने की आवश्यकता है, कुछ नहीं। और जो कुछ नहीं करते उनको सुबह सुबह दौड़ो व्यायाम करो फिर भी बीमार है। ऐसे ये खाली पैर में चलने पर कितने रोग ठीक होता है, ये प्रक्रिया से बदल गया। जूता चप्पल पहन के खाली पैर में चलेंगे ना, इसके द्वारा पैर में दाब होता तो एक चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर कहते हैं इंग्लिश में, चिकित्सा है, उसके द्वारा रोग ठीक होता है। परिश्रम करने वाले बहुत निरोग रहते हैं, परिश्रम बिना परिश्रम शरीर शरीर यात्रा भी नहीं होती है। शरीर जो आजकल परिश्रम नहीं करते तो रोग होता है, इसे शरीर यात्रा भी भगवान ये अभी की बात को नहीं, हमेशा ही देखो भगवान पहले कहते हैं बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर की यात्रा भी नहीं सिद्ध होता है। शरीर के लिए कर्म आवश्यक है, इसे शास्त्रीय कर्म करो। शरीर स्थिति स्वस्थ रहने के लिए कर्म की आवश्यकता है, फिर कर्म कौन सा कर्म करना है, शास्त्र भी तो कर्म करो, घर में सेवा करो, कर्म करो। पहले घर में गृहस्थ आश्रम में जो रहते गृहपत्नी गृहलक्ष्मी घर के कितने काम करते थे, बड़े बड़े धनी लोग भी करते थे, अभी कहीं कहीं कोई करते हैं, सब लोग को नहीं करते किंतु तो कोई कोई करते भी है, कहीं के बड़े है कोई किंतु कोई है, अन्य काम करने के लिए किसको रहते हैं कि भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसा भी कहीं है, और कोई भोजन भी बनाने के लिए नहीं, विभिन्न प्रकार चलता है। तो कुछ कर्म तो अपने करना चाहिए। श्लोक बोलो। एक श्लोक बताया था मैं, कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। महाभारत में कहीं व्यास जी का है, कर्म से जंतु बंधन में आता है, बद्ध होता है, बंधन को प्राप्त करता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। ऐसे यति पारदर्शी लोग कर्म नहीं करते हैं, इसको सुनकर के कोई प्रवक्ता लोग ऐसे आधुनिक सिखाते कर्म से बंधन, कर्म छोड़ो, सारे कर्म बंधन का कारण, सारे कर्म छोड़ो, कर्म छुड़ा देते हैं, ज्ञान हो जाएगा ना। अभी कर्म छुड़ाएंगे तो शास्त्र भी तो कर्म जप छोड़ देगा, संध्या बंधन छोड़ देगा, शास्त्र चिंतन छोड़ देगा, सेवा छोड़ देगा, निश्चित कर्म छोड़ देगा, समय का दुरुपयोग करेगा, जो नहीं करना चाहिए उसको करेगा, समय को नहीं बिताता है तो फिर चित्र टीवी देखना, घूमना फिरना, झगड़ा करना, राग द्वेष ये करेगा। कर्म ना बद्धते जंतु कहने से कर्म बंधन का कारण। इसी प्रकार भगवान कहते तुम इसे, ये जो शास्त्र में आता है अर्जुन के मन में आया करके नहीं, ऐसे साधक के मन में आता है, आ सकता है, आगे कभी आएगा, सबको सोच करे भगवान इसे समाधान दे दिया। जितने शंका हो सकती है, जितने मन में किसका आ सकता है, सबका इसलिए यहां समाधान औसत सबके लिए दिया है। कभी किसके मन में इसे आ सकता है कि बंधन के लिए कर्म हम नहीं करेंगे, कर्म करने के लिए कहा गया, बताया था इस आवासीय उपनिषद में, कुर्व नैवे है कर्माणि जीजी विशेषतम समान, नित्य मंत्र में आया, कर्म करते हुए रहे और कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म तो बंधन का कारण, इसलिए कहते जो कर्म नहीं करना है बंधन का कारण वो ठीक नहीं है। बंधन का कारण कौन सा कर्म उसको समझे, कौन सा कर्म बंधन का कारण और कैसे कर्म मुख्य का साधन हो जाता है परंपरा से। कर्म भी परंपरा से मुख्य का साधन है। तमेतम वेदानुवचन न ब्राह्मणा विविधिशन्ति यज्ञ न दान न तपसा। यज्ञ दान तप ज्ञान का साधन, परमात्मा प्राप्ति का साधन है यज्ञ दान तप। यज्ञ ज्ञान से मुख्य होगा किंतु ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान से तो मुख्य हो जाएगा, ज्ञान होने के लिए साधन चाहिए नहीं, प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति, प्रकाश के लिए कोई साधन चाहिए? कहीं जाकर गुफा में पहुंच गया, ना मैचिस है, ना टॉर्च है, ना बिजली है, प्रकाश है, अभी अंधकार है, आलोक जाओ, प्रकाश हो, है कोई साधन? साधन यदि मोबाइल है साधन है तो है, साधन ही तो प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश से तो अंधकार नष्ट होगा, प्रकाश के लिए साधन चाहिए नहीं? इसी प्रकार ज्ञान होने पर ज्ञान निवृत्त हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, किंतु ज्ञान क्यों कैसे होगा? क्यों ज्ञान सबको नहीं होता है? तुम ब्रह्म ये शास्त्र श्रवण करके कहने वाले को भी ज्ञान नहीं होता है, सुनने वाले को क्या होगा? ज्ञान कितने को हो जाता है? बोलना सरल है, कंठस्थ करना सरल है, प्रवचन करना पढ़ाना सरल है, ज्ञान कोई किसी को होता है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, कोई कश्चित, और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित मां व्यक्ति, कोई कोई। इसलिए कहते किस कर्म बंधन का कारण, किस कर्म मोक्ष का कारण, यहां स्पष्ट करते भगवान। यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयं कर्म बंधन, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र अयम लोक कर्म बंधन, हे कौन्तेय मुक्त संघ तदर्थम कर्म समाचर। कर्म तो बंधन है, कर्म बंधनम यस्य स कर्म बंधन, कर्म उसका बंधन का कारण किसका? जो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के लिए जो कर्म उसको छोड़कर अन्य कर्म करेगा तो बंधन का कारण हो जाएगा। यज्ञ क्या है? यज्ञ वे विष्णु, वेद माया विष्णु पर ब्रह्म के लिए जो कर्म किया जाता है वह कर्म बंधन का कारण नहीं है, उसको छोड़कर बाकी जितने कर्म से वो बंधन का कारण। परमात्मा को अर्पण कर जो कर्म करे वो कर्म बंधन का कारण नहीं है, वही कर्म ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मुख्य का साधन होता है। कौन सा कर्म? परमात्मा को अर्पण करे कर्म, यज्ञ अर्थ कर्म। यज्ञ क्या थे? विष्णु भगवान ईश्वर, ईश्वर अर्पण करके जो कर्म किया जाता है उसको छोड़ करके बाकी जितने कर्म सब बंधन का कारण। मुमुक्ष को क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना चाहिए, कर्म अवश्य चाहिए। तदर्थम कर्म कौन्ते है, कौन्ते तदर्थम करो, उसके लिए कर्म करो, ईश्वर अर्पण करके कर्म करो, किन्तु मुक्त संग हो, कर्म फल में आसक्ति रहित हो करके। ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, इस कर्म से फल मिलेगा, फल में आसक्ति हो तो फल मिलेगा? फल तो मिलेगा, कर्म फल मिलेगा, मुख्य फल नहीं मिलेगा। मुक्त संघ समाचार, सम्यक आचरण करो, समाचार अच्छी तरह से कर्म करो, ठीक ठीक करना, ऊपर ऊपर से नहीं। छात्र भी तो कर्म करते समय प्रमाद नहीं, पाठ नियम रखते तो जल्दीबाजी कर दौड़ कर पूरा कर देना, ऐसा नहीं। समय देकर प्रेम से श्रद्धा पूर्वक पाठ करे, जप करते तो माला हिसाब नहीं कि इतने माला जपना जल्दी जल्दी करके, शुद्ध मंत्र का उच्चारण करते समय भी शुद्ध उच्चारण करे, शुद्ध उच्चारण करे जप करना, अशुद्ध उच्चारण करने से नहीं अनर्थ होता है। गीता आदि पाठ करते तो शुद्ध उच्चारण करके पाठ करे, अशुद्धि है तो अशुद्धि को मार्जन करके शुद्धि करने का प्रयत्न करे, शुद्ध उच्चारण करे, शुद्ध उच्चारण कुछ भी करे, एक श्लोक भी करे तो भी बहुत ही, थोड़ा सा करे एक श्लोक शुद्ध उच्चारण करे, ये अशुद्धि को दूर करके और श्रद्धापूर्वक भक्ति के साथ करे तो बहुत फल सब हुई। फल कुछ नहीं चाहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति है। इसे यज्ञ अर्थात अन्य कर्म बंधन का कारण, इसे आसक्ति छोड़कर कर्म करो। श्लोक बोलो, अधिकारी है जो तो वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ तब तक अवश्य शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। कर्म उपासना व्रत यज्ञ दान तप तीर्थाटन सब सेवा सदाचार पालन सब करनी चाहिए। भक्ति करते करके कुछ नहीं करेगा, ज्ञान में थोड़ा विचार करके छोड़ देगा, कुछ नहीं होगा। भक्ति करने वाले हो, ज्ञान मार्ग में हो, ये सब कर्म करना चाहिए, सदाचार पालन करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, गुरुजन की सेवा करनी चाहिए, यज्ञ दान तप तीर्थाटन सब कुछ करना चाहिए। सब करते करते अंतकरण शुद्ध होता है तो ही सब कर्म ज्ञान का साधन हो जाता है जो निष्काम करता है। तो इसलिए आगे बताएंगे कर्म करने के लिए क्या, क्यों कर्म करना चाहिए, कर्म के लिए उसके लिए युक्ति बताएंगे भगवान। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वरियमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिसं ऋतमवादिसं सत्यमवादिसं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविर्माम् आविद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।